मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। पंचवटी में है राम लक्ष्मण सीता, और अब यहां परिहास संताप का कारण बनने जा रहा है। परिहास होता है हमारे जीवन में तो खुशी भी लाता है, और वही प्रयास परिहास जिसे पन कहते हैं, व्यंग कहते हैं, वही संताप का कारण भी। एक प्रश्न उठता है आपके मन में भी उठेगा मेरे राम, प्रश्न उठता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शूर्पणखा के साथ जो व्यवहार किया, क्या यह व्यवहार मर्यादा के बाहर नहीं था? ये मर्यादा के बाहर क्यों नहीं? मेरी कल्पना राम के व्यवहार को कुछ यूं देखती है, कैसे देखती है मेरी कल्पना राम को पंचवटी में, कि राम पंचवटी में है, पंचवटी में प्रकृति बहुत उदार है, पंचवटी में आकर राम की रमणीयता बढ़ गई। और भी एक कारण है कि वनवास के 10 वर्ष बीतने वाले और अयोध्या के लिए केवल 4 वर्ष शेष रहे। लगता है कि 4 वर्ष तो बहुत होते हैं, लेकिन जब 14 वर्ष का टेन्योर है और उसमें भी 10 बीत गए, मैंने तो अनुभव किया है, मैं 15 दिन के लिए, आजकल जिसे क्वारंटाइन होना कहते हैं, मैंने खुद ही अपने को क्वारंटाइन किया था मॉरिशस में, किसी को नहीं मालूम था कि मैं वहां हूं, एक व्यक्ति को छोड़ो, इमरजेंसी, मेरे घर के लोगों को मालूम था, लेकिन मॉरिशस में मेरे जितने परिचित हैं 100 के ऊपर तो घनिष्ठ हैं, उन्हें किसी को नहीं मालूम। मैं 15 दिन के लिए एकांतवास में था, और लेकिन उन 15 दिनों में भी मेरे राम, जब 10 दिन बीत गए थे तो अचानक मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हुआ कि अब अपने घर जाने का, भारत जाने का, अपने देश जाने का, अपने कानपुर जाने में केवल 5 दिन शेष रहे। बड़ी खुशी होती है ऐसी, तो राम के अंदर भी स्मरण आ रहा है, उर्मियां बढ़ती आ रही हैं, उत्साह की लहरें। एक विश्रांति का भाव राम के अंदर आने, इसका अर्थ ये नहीं है कि राम अपने उद्देश्य को भूल गए। यहां 2 भाव एक साथ, एक भाव विचार से संचालित है और एक भाव अंतश चेतना से संचालित है, इसलिए राम सतर्क भी है, क्योंकि जो भाव मस्तिष्क से संचालित है, दिमाग के ब्रेन के राइट लोब से चल रहा है, इसमें विचार की क्षमता होती है, दिल में कुछ नहीं होता, याद रखना, कहते ना दिल टूट गया दिल मिल गया, दिल कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट लोब ही दिल होता है, इसे दिल कहते हैं, यानी भावना इमोशंस, वो दिमाग के बाएं हिस्से में होते हैं और दाएं हिस्से में तर्क होता है, रैशनैलिटी, तो वो भी है राम, तो इसलिए राम सतर्क है, लेकिन मगन भी, मगन है, इसलिए मौसम भी अच्छा है और समय घट रहा है घर जाने, लक्ष्मण और सीता के साथ खुशनुमा पलों में जी रहे हैं राम। ऐसे में आ गई शूर्पणखा पंचवटी। पंचवटी में शूर्पणखा एकाएक नहीं आए हैं, ये भी समझ गई। शूर्पणखा को मालूम था अपने गुप्तचरों से कि ये दो भाई एक स्त्री के साथ में आकर के यहां पंचवटी में रहने लगे, और वो रेती कर रही है राम की कई दिनों से पीछा कर रही। राम नहीं जान पा कि उसका पीछा हो रहा है, वो ट्रेस किए जा रहा है, चेस किए जा रहा है। कारण है कि जब जिस क्षण देखा था शूर्पणखा ने, जिस पहले क्षण देखा था शूर्पणखा ने राम को, प्यार कर बैठी है शूर्पणखा राम से। और ये शूर्पणखा के जीवन का पहला मौका है। हाँ, होगा तो उसने बहुत से पुरुषों को है जिसकी कोई गिनती नहीं है, उसके प्यार कभी नहीं। दंडका रण में जो हवा चली थी प्यार की, और जिसे चलाया था राम ने, वो आ गई है वो हवा। हाँ, वो हवा, वो वायु यहां भी आ गई है, और शूर्पणखा भी पहचान गई है, जान गई है कि प्यार भी कुछ होता है। पहली बार प्यार कर बैठी है शूर्पणखा। अभी तक तो उसके लिए पुरुष भोग का उपकरण मात्र है, बस इसके अलावा। लेकिन जब से देखा है नैनाभिराम राम को, तब से उसे मालूम हुआ है शूर्पणखा को कि उसका दिल, हाँ दिल धड़कना जानता है। दिल धड़कता तो है ही है, और धड़कता किसकी कमांड से है? दिमाग के बाएं से धड़कने लगा है शूर्पणखा का दिल, पहली बार धड़का है। और वही शूर्पणखा जब राम के सामने आई तो क्या हुआ कि अवांछित राक्षसी मान लिया राम ने शूर्पणखा का, और शूर्पणखा को परिहास का उपकरण मान, एक खिलौना मान लिया, मजाक करने का माना है। मेरे राम व्यास जी ने, योगेश तिवारी जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां आपको दी हैं, तो उपकरण मान लिया यहां पन का। और मेरे राम तुम भी ध्यान रखना, जब पत्नी या प्रेमिका सामने होती है किसी पुरुष के, और कोई दूसरी स्त्री प्रस्ताव देती है रमण का, तो पुरुष के लिए बड़े गर्व की बात है। उस क्षण से बड़ा कोई क्षण नहीं होता गर्व का। अगर पत्नी या प्रेमिका सामने ना हो तो बड़ी बात नहीं है, पत्नी के होते हुए एक स्त्री रमण का प्रस्ताव दे रही है, प्रणय का प्रस्ताव दे रही है, और पुरुष इनकार कर रहा है उस स्त्री को, उपहास उड़ा रहा है। ये पत्नी के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है। हाँ, राम भी तो मानव है, तो राम ने भी यही किया। उपहास और तिरस्कार। उपहास में तिरस्कार छुपा होता है और अगर बिना तिरस्कार के उपहास हो तो वो स्वस्थ मनोरंजन। लेकिन जब तिरस्कार छुपा हो, शामिल हो उपहास, तब तो गड़बड़। उपहास कर रहे हैं राम, श्री राम उपहास कर रहे हैं शूर्पणखा से और तिरस्कार भी उसमें शामिल है। और शूर्पणखा तो राक्षसी है, वो क्या जाने कि परिहास क्या होता है। परिहास का अनुभव तो उसे होगा जिनके अंदर ह्यूमर हो। विदाउट ह्यूमर जो जाती है परिहास नहीं जाती। और राम का परिहास तो देखो, राम ने शूर्पणखा को सुंदरी कहा, सुंदरी कहके उसे पुकारा। और जब सुंदरी कहा उसे शूर्पणखा को, तो उसे वास्तव में लगा कि वो सुंदर है और उसके अंदर राम को पाने की लालसा बढ़ गई। राम ने तो ये भी पूछा शूर्पणखा से कि तुम किसकी हो। जब वो डायलॉग याद आ रहा है कहानी का, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था तेरी कुड़माई हो गई। अरे जब कोई लड़का किसी लड़की से पूछ रहा है कि तेरी कुड़माई, सगाई, एंगेजमेंट, तेरी कुड़माई हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इच्छुक है। तो राम पूछ रहे हैं शूर्पणखा से कि तुम किसकी हो, कौन हो। ये प्रश्न सुनकर के भी शूर्पणखा को लगा कि राम उसे चाह रहे, उसके प्रति उत्सुक है। भ्रम हो गया शूर्पणखा का, उसके हृदय में दिए जलने लगे। भ्रम हो गया कि राम उस पर आसक्त है। और शूर्पणखा को यह भी एहसास हो गया कि सीता के कारण राम उसे अपना नहीं पा रहा। और इसलिए शूर्पणखा को सीता शत्रु समझ में आने लगी और आक्रमण कर दिया शूर्पणखा ने सीता। टारगेट मिल गया कि शत्रु कौन है, सीता। राम तो चाह रहे अब या तो बचा लेगा। अब राम गंभीर हो और जान जाते हैं कि परिहास मर्यादा को पार कर गया। राम ये भूल गए थे उन क्षणों में जब वो परिहास कर रहे थे कि वो तो परिहास कर रहे हैं लेकिन शूर्पणखा तो उनके प्रति पूरी तरह गंभीर है। फिर आगे क्या हो रहा है, राम परिहास में ही आधा सच आधा झूठ बोलकर लक्ष्मण को अकेला बता दे और शूर्पणखा को लक्ष्मण के पाले में डाल चुके। राम ने स्वयं परिहास की सीमा पार कर स्त्री के स्त्रीत्व को मजाक बना दिया स्त्री के स्त्रीत्व। मानव ने अपनी प्रवृत्ति का सुरूर दिखा दिया है। मानव की प्रवृत्ति है अपना रूप दिखा ही देता। अगर राम गंभीरता से शूर्प नखा को अपनी बात बताते तो उसका हृदय परिवर्तन कर सकते, क्योंकि शूर्प नखा के हृदय में राम के लिए प्रेम है, और प्रेम से जब प्रेमिन से बात की जाए तो बात पहुंचती है। और अगर ऐसा होता, मेरी कल्पना कहती है कि शूर्प नखा राम की प्रेमिका की जगह उसकी अनुयायी बन जाती, फॉलोअर बन जाती, दंडकारण्य में राम को एक सक्षम सहयोगी मिल जाता, आगे भी बात बढ़ सकती थी। राम आगे चल करके रिश्ते को पवित्र बना लेते और शूर्प नखा को सीता की ननद बना देते, कितना अच्छा हो जाता। लेकिन राम के परिहास ने सीता के लिए, पूरे जीवन के लिए सबसे बड़ा संताप पैदा कर दिया, संताप पैदा कर दिया। अगली मुलाकात में शूर्प नखा लक्ष्मण को अपना लक्ष्य बनाती है, लक्ष्मण वो भी अपना प्रणय प्रस्ताव, शूर्प नखा का प्रणय प्रस्ताव अस्वीकार करते। अब बहुत अच्छी तरह शूर्प नखा को ये समझ में आ गया है कि इस सारी समस्या का मूल कारण सीता, पहले भी वो समझी थी सीता को शत्रु, फिर से समझ लिया है उसने शत्रु। पहले तो हल्का सा आक्रमण करने के लिए झपटी थी, अब तो पूरी तरह आक्रमण कर बैठती है शूर्पनखा सीता। लक्ष्मण सीता की रक्षा कर लेते हैं और राम के निर्देश पर शूर्पनखा के नाक कान काट देते हैं, काट देते हैं नाक कान। मानव है मेरे राम।
लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहां मनो चुनो ते दे, मनो चुनो ते दे। नाग कान बेनु भय बिकरारा, नाग